آمن الرسول بما، یہاں سے آخری دعائیں شروع ہوتی ہیں نا، یہ وہ دعائیں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، اور یہ ہیں وہ دعائیں جس کو عرش کے خزانے بھی کہا جاتا ہے. پورا قرآن زمین پہ نازل ہوا، یہ جو آیتیں آپ اور میں پڑھنے لگے ہیں نا ابھی اس وقت، یہ آسمان پہ بلا کے دی گئی تھی. یہ ان کی خوبی ہے، معراج کے موقع پہ جو تحائف ملے تھے ان میں سے یہ تحفے بھی ہیں. کیا ہے آئیے دیکھیے، للہ ما فی السماوات والی بات پڑھ کے انسان تھوڑا سا ڈرتا ہے، اللہ کی بڑائی کو محسوس کرتا ہے، تو ساتھ ہی فرما دیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف نازل کی گئی اس کے رب کی طرف سے. اور کون ایمان لائے؟ والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لائے، یعنی رسول اور مومن دونوں ایمان لائے. کس بات پہ؟ جو سب کچھ رب کی طرف سے اترا. کیا؟ کلنا من باللہ، پہلی چیز جس پر وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں، پھر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پہ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پہ، اور سب پر ایمان لا کر کیا کرتے ہیں؟ یہاں وقف ہے، یعنی ایک چھوٹا سا پوز ہے. کیا کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم فرق نہیں بیان کرتے یا ہم فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی ایک پہ. یہاں لکھ لیجئے اس سے مراد کیا ہے، کہ کسی کو ہم مانیں اور کسی کو نہ مانیں. مثلا دیکھیے، یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں رسولوں کو، لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے. حضرت عیسیٰ کو تو نعوذ باللہ وہ کیا کہتے ہیں، ولد الزنا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس کے بعد کرسچن آئے تو موسیٰ کو بھی مانتے تھے الحمدللہ، جیزس کو بھی ماننے لگ گئے، لیکن آ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. اس کے اگلے درجے پہ مسلمان، کلن آمن، سب پہ ایمان لاتے ہیں. ہم جیزس کو بھی مانتے ہیں، ہم موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں. تو کسی ایک رسول کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا یہ کفر ہے. تیسرے پارے کی پہلی آیت آپ یاد کیجئے، جنہوں نے پڑھی بھی ان کو وہ میرا جملہ یاد ہوگا، کہ تفضیل بین الانبیاء جائز ہے. تل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعض، کوئی ایک آلہ تھا، کسی سے کلام کیا، کسی کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، کسی کا کچھ، اٹس فائن، نو پرابلم. بٹ تفریق بین الانبیاء کفر ہے. یہاں اس کی ڈیٹیل ہے. جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے سارے نبیوں کو کوئی نہ مانے، تو اپنے نبی کو ماننے کا جو اس کا دعویٰ ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد دیکھیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک، تیری بخشش، ربنا، اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اتنی خوبصورت یہ ایک آیت ہے کہ جس کے اوپر آپ جتنی مرضی بات کر لیں، ایک سٹریچ میں کیا ہوگا کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اترے، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے رب ہمارے، ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. بہت ساری باتیں اس میں. پہلی بات دیکھیں کہ رسول خود ایمان لایا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بات ہم کسی کو کہیں پہلے خود اس پہ عمل کرنا ہے. جب بات کہنے والا خود نہیں مان رہا تو دوسرا کیوں مانے گا؟ اور آمنا یومن، ایمان، امن، پیس، سکون، خوشی کی بات ہے. پھر دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ رسول بھی اسی طرح سے اللہ کا حکم ماننے کے لیے مکلف ہوتے ہیں جیسے کہ عام لوگ ہیں. ہمارے دین میں وہ وپائیت نہیں ہے کہ پاپ کے لیے اور رولز ہیں اور ان عام لوگوں کے لیے اور رولز ہیں. پھر اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ نے رسولوں کو بھیجا کسی کی طرف، تو ان کا مقصد اپنی ذات سے جوڑنا نہیں تھا بلکہ اللہ سے جوڑنا تھا، اور اللہ کے حکموں پہ نکلنا تھا. پھر اگلی بات آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. کون ہوتے ہیں متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، بس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. پھر اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، وہاں ایک لفظ تھا یؤمنون بالغیب، یہاں اس کی ڈیٹیل ہے، ملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی وہاں ایمان مجمل تھا، کمپریہنسو بیلیف تھا، یہاں ایمان مفصل ہے۔ آپ نے کبھی لوگوں کے ہاتھوں میں وہ سپارے یا نورانی قاعدے بھی دیکھے ہوں گے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، تو یہاں ڈیٹیلز ہیں۔ اور کسی ایک کو مانے بغیر بندہ بچ نہیں سکتا۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے بیلیف سے اوپر اٹھ کر عمل تک جاتا ہے۔ اور اسی ایک آیت میں الہی المسیر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سونر اور لیٹر ہم سب نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، ہم سب اللہ کے اس طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ مسیر ہے نا، اب دیکھنے میں میم اس لفظ کا روٹ لگ رہا ہے، نہیں، سوات یا را، سیر، سارا یا سیرو کہتے ہیں کسی شے کا ایک کسی خاص حالت میں پہنچ جانا، خاص مقام تک پہنچ جانا، ایک خاص شکل اختیار کر لینا۔ تو مسیر جو ہے اصل میں ایک جگہ ملنے کی چیز ہے۔ ڈیٹیل میں نہ بھی جائیں تو اس ایک آیت سے ہمیں جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی طرف ہی جا کر بچیں گے، ورنہ ہم اب نہیں بچ سکتے۔ اگلی بات اس آیت سے کیا پتہ چلتی ہے، قالو سمینا واتانا، سنا ہے تو اب مانو بھی۔ ہمارا دین صرف قرآن پڑھنے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ پڑھے ہوئے قرآن کے اوپر عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اور جب ایک بندے کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ للہ ہی ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کو اپنے گناہ اتنے ستاتے ہیں کہ زبان سے یہ لفظ بھی نہیں نکل رہا کہ فاغفر لی، رب اغفر لی، ربنا، بلکہ کیا کہا، غفرانک، یعنی یہ بے ساختگی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں، یہاں یہ کیوں نہیں کہا کہ اغفر ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش، کہنا تو یہ چاہیے تھا نا۔ یہاں کہا جا رہا تیری بخشش، تیری بخشش، کیا مطلب تیری بخشش ہے تو کیا ہو؟ یہ بالکل ایسی صورت ہے جیسے آپ دیکھیے کہ کسی کو پانی چاہیے نا، وہ کہتا ہے اے پانی دیجئے گا، پلیز برنگ می سم واٹر، ٹھیک ہے؟ کوئی سننے والا کہے گا اچھا مانگا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دے دیتی ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھول ہی جائے۔ اور ایک صورت ہے کہ کوئی بول رہا ہے اور اس کو ایک دم گوتا لگ گیا یا گلا خشک، کہتا پانی پانی پانی، تو آواز کی ٹون سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی وہ بڑی ضرورت میں ہے، یعنی ہی نیڈ، یعنی اس کی اندر ایک تڑپ اور فکر ہے کہ مجھے پانی دو نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ تو غفرانک، کہہ بھی نہیں پا رہے اللہ سے کہ اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ مستغفار کی وہ دعائیں بھی نہیں پڑھ پا رہے جو کہ تو نہیں سکھائی ہیں، بس اپنے گناہوں کے بوجھ نے اتنا بوجھل کر دیے کہ غفرانک، شدت ہے، ایموشنز بھی ہیں اس میں، اس میں سٹیمولیشن بھی دکھ رہی ہے کہ ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے ایسے ہیں کہ ہم تیرے آگے اپنی بات بھی پیش نہیں کر پا رہے، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے۔ آپ دیکھیے کہ جب بندے کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو دوسرے کی نظروں سے نہیں دیکھتا، اللہ کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس گناہ پہ ٹکٹ ہے، اس گناہ پہ ٹکٹ نہیں ملتا گاڑی میں، یہ آپ یہاں کے آئرش لاء کے مطابق ہی کہیں گے نا، یا جو جس ملک میں وہ وہاں کے لاء کو دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ کا احساس بندے کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا فکر لگا دیتا ہے۔ اور جب ایک بندہ حقیقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے نا، اس کے بعد ہی اصل بات سمجھ آتی ہے۔ دیکھیے آپ کے بچے ہیں ماشاءاللہ، بچے سے سیکھیے، ماں مارے بچہ ماما پکارے، مارتی ماں سے اگر کوئی دوسرا بچے کو چھڑانا بھی چاہے نا تو آپ دیکھیے گا بچہ نہیں جاتا دوسرے کے پاس، ماں ہی کے پاؤں میں پڑتا ہے، یہی اللہ چاہتا ہے۔ تمہاری زندگی میں کوئی لمحہ آ جائے، کوئی خوشی کا، کوئی غم کا، کوئی فکر کا، تم نے میری ہی طرف پلٹنا ہے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے اللہ تجھے کیا شکل دکھاؤں گی، کس صورت میں تیرے پاس جاؤں گی اور کس طرح تیری طرف آؤں گی۔ اور جب ایک انسان اس تڑپ کے ساتھ بولتا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے۔ کسی کا کال ہے کہ قیامت کے دن اگر مجھے چوائس ملے کہ تمہارا حساب تمہارے سگے ماں باپ لے لیں یا اللہ تعالیٰ لے لیں، تو میں ماں باپ کو چھوڑ کے اللہ کی بات کروں گا، کیونکہ ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے ہمارا رب، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ फिर भी वही फंसाएगा जिसने अपने आप को पकड़ाने का इरादा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बंदा एक नेकी करता है तो 10 लिखी जाती हैं, एक गुना करता है तो एक ही लिखा जाता है। फिर आपने फरमाया बदकिस्मत है कि जिसकी इकाइयां उसकी दहाइयों पे गालिब आ गई। एक एक करके 10 गुना तो कर लेता है लेकिन उसके मुकाबले में एक नेकी नहीं करता। फरमाया अब तो सिर्फ क्यामत के दिन वही तबाह होगा जिसने इरादा किया हुआ कि मैं तबाह हो जाऊं। इसी तरह एक रिवायत में कहीं पढ़ रही थी कि एक बद्दू एक दफा नबी सल्लम के पास आया तो दीन की कुछ बातें पूछी। तो जब सारी बातों में ये पता चला कि आखिरत में हिसाब होना है और पकड़ा जाएगा बंदा या उसका हिसाब, कहने लगा कि नबी सल्लम ये बताइए क्यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? तो नबी सल्लम ने फरमाया कि अल्लाह लेगा, युहासिब कुम्बेला। तो वो बद्दू था सीधा सा बोला, कहने लगा फिर कोई फिक्र नहीं, फिर कोई फिक्र नहीं, फिर कोई फिक्र नहीं, और हंसता हुआ चला गया। अल्लाह के नबी सल्लम उसकी बात पे मुस्कुरा दिए। देखिए अपनी ही माँ बच्चे के 10 जुर्म भी होना पर्दा डालती है। ये तो फर्क पता लगता है जब लड़कियां ससुराल जाती हैं। वो जो आधा दिन बिस्तर पे सोती थी तो माँ ने नहीं कभी किसी को कहा था जो 12 बजे उठती है। तो सास से जब वास्ता पड़े तो फिर वो जब कहती हैं सबको कि ये 9 बजे तक सोई रहती है और मुझे चाय नहीं देती और ये वो है, तो फिर पता चलता है कि फर्क है ना कि यहाँ माँ नहीं है। मिसाल दे रही हूँ, खैर के साथ हो सकता है ऐसा ना भी हो लेकिन एक मिसाल की बात कर रही हूँ। जिस जात ने मुझे आपको पैदा किया अगर हम उससे प्यार करके उसकी मर्जी का बन जाते हैं ना तो वो क्यामत के दिन हमें रुसवा नहीं करेगा। शर्त यह है कि हमारे इधर केयरलेसनेस ना हो। एक होता है आई डोंट केयर, केयरलेस एटीट्यूड, वो खतरनाक है। इसके बरक्स अल्लाह को पता है हम इंसान हैं, छोटी मोटी बड़ी हमसे बड़ी भी हो जाएंगी, बट जब बंदा गुनाह करे और डरे अल्लाह माफ करेगा। बट द क्वेश्चन इज हेयर कि गुनाह करके जब बंदा अकड़ता है ना तो अल्लाह को उस पर बड़ा गुस्सा आता है, जिसको हमारी जुबान में क्या कहते हैं, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये खतरनाक है और दुख के साथ कहूंगी कि आज के दौर का मसला ये है। आज के दौर में लोग गुनाह को गुनाह ही नहीं मानते। भाई आप कर लें गुनाह, कहते नहीं ये भी ना कहो कि ये गुनाह है। बड़ी बड़ी हकीकतें कबीरा गुनाहों को भी लोग कहते हैं ये मजबूरी है, ये लॉ है, और आज के दौर में ये ऐसे नहीं वैसे नहीं, पिक तक हलाल कर दो, सूद की तो बात ही छोड़ दो। तो अल्लाह सुबहान तआला अगली आयत जो आखिरी आयत है उसमें कहते हैं, देखो मैं कोई जालिम हूं, मैं कोई सख्त दिल हुक्मरान हूं, कोई मैं ऐसा बादशाह हूं कि जिसने सारी राया को मुश्किल में डालना है, मैंने तुम्हें बहुत नरम अहकाम दिए हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, नहीं तकलीफ देता अल्लाह ताला किसी शख्स को मगर उसकी ताकत के मुताबिक। कैसे? यानी उसने तुम्हें जो शरीयत दी है वो नाकाबले अमल नहीं है, वो कोई बोझ डालने वाली शरीयत नहीं है। मसलन आप देखिए कि एक मिसाल समझिए फिर आपको यहां से समझ आएगी। बाज लोग कहते हैं देखो जब अल्लाह नहीं किसी को तकलीफ देता तो आप क्यों कहते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ो, मुझे तकलीफ होती है इससे। जब आप कहते हैं कि ला इकराह फिद दीन तो फिर आप मुझे क्यों कहती हैं आप रोजा रखें। मिसाल है कोई स्टोन में बात करें, या आप कहते हैं कि जी सूद अल्लाह को नहीं पसंद छोड़ दे तो आप कहते हैं क्यों आप ऐसे कहती हैं, अल्लाह तो खुद कहता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। मैं एक मिसाल देती हूँ फिर दोबारा आप सब में से ही, मैं आप में से किसी को कहती हूँ कि मुझे पानी दे दें तो आप में से कोई कहता है आई कुडंट, अब आपने नहीं दिया, मैंने जो कहा आपका एटीट्यूड बता रहा है कि आप पानी नहीं लाना चाह रही, ठीक है। और दूसरी सूरत है मैं आपसे कहती हूँ कि आप में से कौन है जो यहाँ से पैदल डबलिन चली जाए, वॉक करें शाम तक वहाँ पहुँच जाए, तो फिर भी आप यही कहेंगे ना आई विल नॉट गो, आई कैन नॉट डू दिस। दोनों में आपका इनकार ही है ना, फर्क क्या? ये बात है जो आज वो कहना चाहिए कि गिरा बांध के दुपट्टे को ले जाएं या स्कार्फ को बांध के ले जाएं। जब हम ये कहते हैं कि पानी नहीं देना मैंने तो उसका अंदर कि आप कर सकते थे बट आई विल नॉट गिव यू वॉटर, इसमें आपकी विल आ गई है। लेकिन जो दूसरी बात मैंने आपसे कही कि आप यहां से डबलिन जाएं बाय वॉक, ये हुक्म ठीक नहीं दिया मैंने, इट वॉज माई फॉल्ट। मैं आपसे कहूं कि एक जस्ट लगाए और माउंट एवरेस्ट पर चली जाए तो आप कहेंगे टीचर आप कैसी बात कर रही हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ये मेरा कसूर है, उसमें आप बिल्कुल बेबस है। ये जो बात है ना ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये वो बात है कि अल्लाह ने मुझे आपको माउंट एवरेस्ट पे एकदम जिस्त लगाने को नहीं कहा, यहां से पैदल डबलिन जाने को नहीं कहा, एक टांग पे खड़े होकर हज करने को नहीं कहा। अल्लाह ने जो कहा है वो इतना ही कहा है कि पानी ला दो, नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, तो इट्स इन योर रीच। तब फर्क समझिएगा। फिर आज मुसलमानों ने इस फर्क को बहुत हद तक खत्म कर दिया कि हम जितने शरीयत के हुक्म नहीं मानते ना, वो नहीं है कि जो माने ही नहीं जा सकते, बल्कि वो आई विल नॉट डू दिस। और जिसमें आपकी विल आ गई, आप विल तो इंग्लिश में समझते हैं ना, कितने लफ्जों में आती है विल बताएं आप जी, बोलिए। तीन लफ्ज तो मुझे याद है इंग्लिश के। शाबाश। यानी देखिए ना, आई विल नॉट डू दिस, आई वुडंट, यानी सबको पता है फ्यूचर में किसी काम को करना ना करना, आई विल डू आई विल नॉट। और एक वो विल जो दूसरी हमारी विल होती है, एक विल हमारी ख्वाहिश भी तो है ना। विल यानी एक विल वो है जो ऑफिशियल विल है, जो कि मरने के बाद के लिए की जाती है। अब जब हम ये कहते हैं ना आई विल नॉट फास्ट, तो क्या इसका ये मतलब है कि अल्लाह ने हमें जो फास्टिंग का हुक्म दिया, इट्स नॉट पॉसिबल? इट्स पॉसिबल, बट मैं आई एम फॉलोइंग माई विल। विल को आप डिजायर कह लें, फिर बात समझ आ जाएगी कि जब हम दीन के किसी बेसिक रिचुअल, किसी डूस और किसी डोंट में से किसी का इनकार करते हैं ना, तो वो अल्लाह का कसूर नहीं कि उसने हमें मुश्किल हुक्म दिए, वो हमारा कसूर है कि हमने अपनी डिजायर में पढ़ के उसको छोड़ा। सोने की ख्वाहिश ने फजर छुड़ा दी, कमाने की ख्वाहिश ने जुमा छुड़वा दिया, और ज्यादा दुनिया कमाने की सूरत में असर चली गई, वक्त इतना थोड़ा था खाने पीने में लग गए, मगरिब चली गई, सारे दिन के थके हुए थे, ईशा पड़े बगैर सो गए, हर जगह हमारी विल है। हालांकि अल्लाह ने जो 5 नमाजों को हुक्म दिया, ये ऐसा नहीं था कि ये किया नहीं जा सकता। बात बात है। और हमारी शरीयत बहुत आसान है। अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हें कोई बात मुश्किल दी नहीं है, या तो अल्लाह ने आपको मुझसे कोई ऐसे काम कहे होते जो इंसान कर ही नहीं सकते, तो ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। और याद रखिए, हर बंदे की वुसअत फर्क है। औरत को जैसा बनाया था ना, उसका अंदर से जो पोस्चर था, जो उसकी स्ट्रेंथ थी, कुव्वत थी, अल्लाह ने उसको बस उतने ही काम दिए थे। अब वो औरत उससे बड़े काम करेगी तो एक्सपोज होगी, तो परेशान होगी। इसी तरह मर्द को अल्लाह ने एक स्ट्रांग पोस्चर दिया था। मर्द स्ट्रांग काम करेगा ना तो वो और स्ट्रांग होगा, और वो स्ट्रांग काम छोड़ के घर बैठ जाएगा और औरतों वाले काम करेगा तो वो भी बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। अल्लाह सुबहान तआला ने हर बंदे के हालात, माहौल, इलाके, हर एक के हिसाब से आजमाइश दी है। एक बंदा मुसलमान घर में पैदा हुआ है, बचपन से अरबी पढ़ता है, फर फर बोलता है, नमाज, रोजा, हज, जकात, उसको फर फर पता है। एक आज 40 साल की उम्र में मुसलमान रिवर्ट होती है, दोनों की वसत फर्क है। ये तो डा बोलेगी दा को, वो गैरिल मगडूब पड़ेगी, मगदूब नहीं कह सकती वो, क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन फर्क है। अब वो अरबी पढ़े और वो पढ़े हदीना एहदीना सिरात अल मुस्तकीम, उसकी वसत इतनी अल्लाह उसको माफ कर देगा। और अगर मैं आप पैदाइशी मुसलमान, अगर अरबी भी सही नहीं, तिलावत सही नहीं करते, मखारज ठीक नहीं, अल्लाह मुझसे आपसे पूछेगा। इसलिए कल हा माँ का सबत उसके लिए है जो उसने कमाया। हा क्या है? मुअन्नस, फीमेल, औरत का सीगा, कि हर एक के लिए वो है जो उसने कमाया। लहा जो है ना, ये फॉर के मानों में आता है, उसके लिए, जिसको आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में भी हम इसको बोलते हैं ना फॉर हर, यानी अच्छी चीज होती है ना, आप कहते हैं आई ब्रिंग दिस फॉर यू, ठीक है। बट व अलई हा मकतसबत, और उसके अगेंस्ट है जो उसने कमाया। जब एक बंदा अच्छा काम करेगा तो आखिरत में उसकी अच्छाई का फायदा उसको ही होगा, और जो गुनाह करता है आज दुनिया में वो उसी के खिलाफ पड़ेगी। यानी आज दुनिया में आप और मैं जो अच्छे बुरे काम करते हैं, वो हमारे अपने हक में या हमारे खिलाफ या हमारे अगेंस्ट है या हमारी फेवर में पड़ते हैं। आपको होता है कि ये आयत किस आयत का जवाब है? शायद आप पिछली आयत के ऊपर नजर रखें तो आपको भी समझ आ जाए। पीछे क्या आया था पहला इस आयत का? आयत 84, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्थ। बोलिए, शाबाश, बोले। वाइन इन तुब दो तुखफू हो, उसके बाद क्या था? युहासिब कुंभ, ये युहासिब कुंभिल्ला का जवाब आया। सहाबे कराम इतना घबरा गए, इतना परेशान हो गए कि अल्लाह ताला आप हर बात का हिसाब लेंगे, तो उस पर फिर ये हिस्सा आयत का नाजिल हुआ था कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इंसान से उसकी वुसअत से ज्यादा अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे। मराज यह कि अल्लाह ताला उससे मामला वैसा ही करेंगे जैसा कि वो करवाया जाना चाहता है। इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत हदीसें हैं, मैं सारी इकट्ठी एंड पे बोलती हूँ, सिर्फ आयत को पूरा कर लें। अब आखिरी हिस्सा दुआ का है। थोड़ा सा अपने जहन को साथ रखिए मेरे। गजवा बदर करीब थी और सूरत बकरा जो है ये मदनी दौर के शुरू में नाजिल हुई। मुसलमान वेरी ओप्रेस्ड, चारों तरफ से मसले, उधर मक्का वाले, इधर से मदीना वाले, और मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ऐसे थे जैसे आप कह लें कि तकसीम के बाद मुस्लिम्स के पाकिस्तान में होंगे। अल्लाह ताला ये दुआ सिखा रहे हैं, जब मुसलमान मगलूब हों, ओप्रेस्ड मुस्लिम्स को क्या पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं ना हमें दुआएं बताएं, ये किस मौके पे पढ़ें, ये कब पढ़ें, क्या करें, तो अल्लाह ताला ने एक दुआ सिखाई कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना, ए हमारे रब हमारा मुआखिज़ा ना करना, हमारी पकड़ ना करना अगर हम भूल जाएं, औ अख्ताना या हम खता कर दें, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ए हमारे रब हम पर ना डाल वो बोझ, कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, जैसा कि तूने डाला था उन लोगों पे जो हमसे पहले थे, वाफ़ु अन्ना और दरगुजर फरमा हमसे, वग़फ़िर लना और बख्श दे हमको, वरहमना और हम पे रहम फरमा, अंत मौलाना तू ही हमारा मौला है, वली दोस्त, फंसुरना पस गालिब फरमा हमको, हमारी नुसरत फरमा, किस पे, अलल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम के ऊपर, ए अल्लाह काफिर कौम पर हमारी मदद फरमा और तू हमारा मामला बेहतर कर दे। खूबसूरत दुआ पे सूरत बकरा का इख्तिताम है। इस एक दुआ में अगर आप देखें ना तो ताल्लुक बिल्ला की मुख्तलिफ सूरतें आपको दिखती हैं। अल्लाह ताला ने ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा कह के बता दिया कि अल्लाह ताला ने तुम पर कोई ऐसा बोझ नहीं डाला जो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए ये तो माँ की ज्यादती होगी ना कि अपने 4 साल के बच्चे से कहे कि 10 किलो घी का डब्बा उठा कर लाओ, अल्लाह नहीं पकड़ता, ऐसे तो नहीं अल्लाह ताला बोझ डालता, ऐसे ही कि नहीं, सच बताइए। माँ क्या कहेगी, अपना बैग पकड़ लो, अपना जूता पकड़ लो, दैट्स इट। जब एक माँ ऐसा काम नहीं कर सकती तो आप और मैं बताइए क्या अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे अहकामात देगा जो बंदे बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये अलग बात है कि हम अब अपनी वसत को कम कर दें सिर्फ मजबूर बनने के लिए कि क्या बताऊं मैं तो इतनी मजबूर हूं, अब मेरे पास तो और कोई चारा ही नहीं है। बस आप देखिए कि आप कहते हैं मैं -10 में बाहर आऊं, अब आपके पास इधर -10 नहीं है, लेकिन नॉर्वे में मोस्टली सर्दियों में टेम्परेचर -10, -9, -8 रहता है, कभी अनयूजली इससे ऊपर भी चला जाता है और कभी बहुत ही ऊपर चला जाता है। अब आप कहते हैं, एक सवाल मुझसे ही पूछें आप लोग कि भाई क्या बहुत सर्दी में घर से निकलना मतलब कोई फेर बात है, तो ऐसा ना करें कि हम 3 माह की छुट्टियां ले लेते हैं। मुझसे ही को आके पूछ सकता है कि सर्दी की वजह से अपनी आते और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं तो फिर बीमार ना हो जाएं, और ये तो फिर ज्यादती होगी कि हमारी इस तरह की बातों से ये हो जाए। ठीक है, तो मैं इसका एक सिंपल सा जवाब दूंगी कि यस वी कैन डू दिस, पर एक शर्त है, फिर हर काम से छुट्टी लें आप इन 3 माह में, नॉर्वे वाले हों या कनाडा वाले हों या -टेम्परेचर वाले कैलगरी वाले हों, उनको छुट्टियां दी जा सकती हैं, पर शर्त एक है, फिर इन 3 महीनों में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। और अगर आपके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, आपके हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, आप डॉक्टर्स पे जा रहे हैं, आप शादियों में जाते हैं, दावतों पे जाते हैं, मेहमानों को लेने एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो फिर इधर क्यों नहीं, बस ये जवाब है। होता क्या है कि जब दीन का मामला आता है ना तो हम में से बहुत सारों को, अल्लाह हम सब को हिदायत दे, अपनी वसत बहुत छोटी होती हुई दिखती है। हमें ऐसे लगता है कि हम सबसे ज्यादा मजबूर उस वक्त होते हैं जब हम किसी अल्लाह के तकाजे पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला की नजरों में जचना ही तो सबसे बड़ी बात थी। और आप देखिए कि जिसने मुझे आपको सबसे ज्यादा दिया और सब कुछ दिया, क्या उसी के मामले में हम डंडी मारें? हम कहते हैं जी दुनिया के सारे काम चलते हैं, कोई दूसरा हमारा रिश्तेदार या कोई प्यारा कुछ कहे बिना शर्मिंदा हो, नहीं मेरी वजह से आपको बड़ी मुश्किल हुई, तो आप कहते हैं ये चलता है, हम कौन से फारिग होते हैं, अगर आपकी वजह से कुछ काम करना पड़ा तो हम तो रोज ही ये काम करते हैं। तो याद रखिए ये मेरी आपकी खुशबख्ती है कि हम अल्लाह सुबहाना ताला के रस्ते में जमे रहें उस वक्त जिस वक्त दूसरे गिर जाते हैं। اور ہر بندے کو اللہ نے اس کی وسعت کے مطابق آزمانا ہے، اس لیے کہ جب آپ اور میں ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں نا، تو ہم اس کے مخلص ہوتے ہیں. مثلا اگر آج یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، میں اپنے اوپر لے کے کہوں گی کہ مجھے آپ سب کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکر نہیں ادا کیا نا، اس نے اللہ کبھی نہیں کیا. مجھے آپ کا کس بات پہ شکر گزار ہونا چاہیے؟ کیا آپ نے مجھے موقع دیا؟ آپ مجھے کہتے نہیں بیٹھیں گھر ہم خود ہی پڑھ لیں گے، ہم ریکارڈنگ سے کر لیں گے، چلے ہم نہیں بھی کرتے، آپ فکر نہ کریں، تو میں کیسے یہاں آتی؟ پھر ہر وہ بندہ جس نے ہمیں یہاں آنے میں مدد دی، کتنے ریسورسز جمع ہوئے، کتنی ایفرٹس، کتنی کوششیں ہوئیں، پھر آپ اور میں ادھر آئے، اس مسجد میں بیٹھے، یہاں آئے، جو بھی ہوا، آپ سب کو میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح پتا ہے کہ جب کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں کتنے کام ہوتے ہیں. تو کیا وہ لوگ ہمارے محسن نہیں ہیں؟ لیکن عام طور پہ ہوتا کیا کہ ہم محسنوں کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، یہ ہمیشہ ہمیں مشکل میں ڈالتے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، یاد رکھیے، صرف ہمیں وہ لوگ یاد رہ جائیں گے جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ ساری دوستیاں قیامت کے دن ختم ہو جائیں گی. الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں حقیقت میں ہمارے حقیقی دوست تھے اور دین کے نام پر ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے نا، وہی کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے، رکھوائیں گے، باقی سب لوگ ایک دوسرے کو بھلا دیں گے. یہی اصل میں اس پوری صورت میں میں نے آپ نے سیکھا کہ بنی اسرائیل کی کہانیاں پڑھتے پڑھتے مسلمانوں تم اپنے حالات نہ بھول جاؤ، اور اللہ تو کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا. آپ دیکھیے، کیا میں اور آپ گھر میں ہوں تو سارا دن بیٹھے رہتے؟ جو ڈاکٹر بنتا ہے وہ کرام سے بنتا، پائلٹس بنتے ہیں وہ ایسے ہی بن جاتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے نا. ایک فلم نہیں آرام سے بنتی، جان جوکھوں میں ڈال کے کئی سلاٹس وہ پکچرائز کراتے ہیں. کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رستے میں آزمائے جائیں، جس نے دیا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. فقیر بھی ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو اصل میں وہ ہمیں ایک نیکی کی دعوت دے کے جاتا ہے کہ نیکی کر لو، مجھے تو اللہ نے بھی دے دینا تھا پر تم دے دو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا. اور یہ جو لفظ ہے نا کہ لا یکلفا، تکلیف لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں نا، یہ کاف لام فاس ہے، کلفا. الکلف کہتے ہیں سیاہی مال زردی، یعنی یلو کلر ایسا ہوتا ہے جس میں بلیکش کلر شامل ہو چکا ہو. کلفت کا لفظ سنا ہے، دلوں میں کلفت ہے، سیاہی، ایسی. تو تکلیف کہتے ہیں مشقت کے باوجود کسی کام کو برداشت کرنا. ہر مصیبت یا حق جسے دقت اور مشکل کے ساتھ برداشت کیا جائے اس کو تکلیف کہتے ہیں. اردو میں یہ بہت عام لفظ ہے، اس لیے ہمارے لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں انسان اللہ تعالیٰ کی اس بات کے جواب میں یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے جو دین بنایا وہ بہت اچھا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور جو چیز ہے نا کہ لہا ما کسبت ولیہا ما اکتسبت، اس کو بھی سمجھیے گا. کسب کا لفظ کاف سین با سے ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے جمع کرنا، پھر دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، تیسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے اور پا لینے کے. قرآن پاک میں عموماً کسب کا لفظ جو ہے نا، یہ آخرت کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے آتا ہے. اسی سے پھر کسب ہے نا، کسب حلال، کسب حرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنیاد بنا کر آپ کو مجھے بتا دیا کہ دنیا میں جو کوششیں اور جو کام کوئی انسان کرا رہا ہے نا، اس کی اصل جزا یا سزا اس کو آخرت میں ملے گی. دنیا میں کوششیں بہت ہیں، ریزلٹس نہیں نکلتے. بعض دفعہ ریزلٹ، کوشش کچھ بھی نہیں ہوتی، ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے. ڈونٹ لوز یور ہارٹ، ڈونٹ بی سیڈ. کسی کو یہاں سے 5 منٹ دور سے آنا تھا، کسی کو 1 گھنٹہ دور سے آنا تھا، کسی کے گھر والے خود چھوڑ کے گئے، کوئی گھر والوں کو بہلا کر آیا. اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اس کے مطابق، اور کوئی آ سکتا تھا اور نہیں آیا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا دیکھیے، لہا ہاتھ کے دیکھیے، لہا اور علیہا اگینسٹ، اللہ لگ جاتا ہے نا کسی کی پریپوزیشن میں تو اگینسٹ کا معنی ہوتا ہے. جیسے شاہد علی، کسی کی سفارش کرنا، اور شاہد علی، کسی کے خلاف گواہی دینا. बिल्कुल यहाँ यही बात है कि अच्छा या बुरा तुम्हारा खुद तुम भुगतोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगा। आप देखिए, जिस बंदे को इस बात का यकीन हो, क्या वो फिर पीछे हटेगा? और जब एक बंदा अपने आप को इस बात में कह दे कि रब्बना ला तो आखिसना, अखस का लफ्ज उर्दू में सुनते, मुआखजा करना, उसी से पकड़ना, इन अखजा रब्बी कला शदीद, कुरान पाक में आता है। नसीना क्या है? भूल जाना। रोज नमाज पढ़ते थे, वक्त चेंज हुआ, घड़ी 1 घंटा आ गई या पीछे चली गई, याद ही नहीं रहा। अरे जोहर नहीं पड़ी तो असर का वक्त आ गया, ये है नसीना, भूल गए। जैसे नबी सल्लम गजवे खंदक के बीच में असर की नमाज भूल गए, तो जब पता चला तो सूरज डूबने वाला था। आपने फरमाया कि अल्लाह इन कुफार के घरों को आग से भर दे जिन्होंने हमें सलातुल वुस्ता से रोक दिया। तो ये मुमकिन है? सोते रह गए, आंख नहीं खुली, उठी तो खो सूरज डूब रहा है। ये भी निसियान है, भूल जाना। और निसियान का असल मानी क्या होता है? तर्क कर देना, छोड़ देना। जब किसी के पास आप कोई चीज रखा दे और वो उसकी हिफाजत करना भूल जाए ना, तो इसको निसियान कहते हैं। हिफाजत करना, छोड़ देना। निसियान क्या होता है? रोज करते थे, आज भूल गए। रोज नमाज पढ़ते थे, आज भूल गए। भूल चूक माफ है दीन में, पर कौन सी? जो आम हालात में करते थे, किसी दिन भूल गए, कोई बात नहीं है। आदम के लिए भी तो यही लफ्ज आते हैं ना कुरान पाक में, फनसिया वलम नजिद लहू अस्मा, कि आदम भूल गए क्योंकि हमने उनमें अज़्म नहीं पाया था। तो आप और मैं खुद से पूछें, कौन सी नेकियां मुझे मुस्तकिल ही भूली हुई है? देखिए, जो मुस्तकिल भूलता है ना, वो नसीया नहीं है, ये बताना चाह रही हूं। वो कहते हैं ना कि भोले ही बन गए, अच्छा ये भी करना था, ये निसियान नहीं है। निसियान क्या? कि यू नो दिस आई नीड टू डू, बट फिर किसी दिन भूल गए, इट्स ओके, अल्लाह माफ करेगा, वो बहुत गफूर रहीम है। पर तुम तो भूले ही हुए हो, पहले भूले फिर भोले बन गए, कोई गिनती नहीं याद, कितनी पिछले हफ्ते में नमाजें पढ़ी, कितनी छोड़ी, इस साल कितने रोजे रखे, कितने छोड़े, कितनी गिफ्तें की, कितनी चुगलियां की, कितने झूठ बोले, भूले ही हुए हो, काउंटलेस हो, फिर निसियान नहीं है। केयरलेस एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त, नेवर। आप देखिए, अमेरिकन लॉ का मुझे कुछ ज्यादा याद है, आपके मुल्क में भी ऐसे होगा, दुनिया के हर मुल्क में ये होता है कि पहली दूसरी तीसरी गलती माफ होती है, उसके बाद अगर आपके 10 टिकट हैं, 20 हैं, फिर आपसे वो ड्राइविंग लाइसेंस ले लेंगे, पहली पे छोड़ देंगे, अलर्ट दे देंगे, तीसरी पे कुछ पैसे ले लेंगे, पांचवी छठी पे आपका लाइसेंस ले लेंगे। यही अल्लाह कहते हैं, अगर आदि मुजरिम हो, यू आर क्रिमिनल, तुम्हारी आदत बन गई, तुम अल्लाह से रूठ के जी रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं कौन देने वाला है, कौन नहीं। कहते लोगों को खुश रखो, हुकूमतों का डर, लोगों का डर, उनकी मोहब्बत, तो फिर तुम निस्यान में नहीं हो, फिर तुम यू आर क्रिमिनल। देखिए, एक होता है क्रिमिनल, जिसने क्राइम किया है, और एक होता है, उर्दू का लफ्ज मुझे याद है, आप इंग्लिश में करना चाहें तो बता दें, जैसे एक होता है मुजरिम और एक है मुलजिम, क्या फर्क है? मुजरिम है क्रिमिनल, जिसके ऊपर जुर्म साबित हो गया, मोफाइल मुजरिम जरमा से। मुलजिम कौन है? जिस पे इल्जाम लगा हुआ है, माइट भी ठीक हो, माइट किया नहीं, तो मुजरिम नहीं माफ। ये जो आज के दौर की गफलत है ना मुसलमानों की, ये मुजरिमाना गफलत है। ऐसे बोले बने अल्लाह की नजरों में कि बस अल्लाह जी पता ही नहीं चला, वो अच्छा मुझे तो याद ही नहीं ये सूद है, अल्लाह जी ये पर्दा भी कोई चीज होती थी, हाँ दादा बू कहते तो होते थे, बट वेस्ट में आके पर्दा, हाउ इज इट पॉसिबल पर्दा, ये जुर्म है, फिर ये निस्यान नहीं है। नसीना के बाद दूसरी क्या कहिए? अख्ताना। खता और गलती के लिए बहुत सारे लफ्ज हैं कुरान में, यहां सिर्फ खता का लफ्ज देख लें कि जब एक बंदा अपने आप को अल्लाह की नजरों में इस तरह पेश कर देता है कि वो अपने छोटे बड़े गुनाहों पे फिक्रमंद हो जाए, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसको बचाता हूं। खता को आप लिख लीजिए इंग्लिश में मिस्टेक, मिस्टेकन, गलती से ले ली एक चीज, वो कसूर जो इरादे के साथ ना किया जाए उसको खता कहते हैं। इसी से लफ्ज खतिया भी है, वो कसूर जो जान के हो जाता है, बस चीजें इंसान नहीं करना चाहता, किसी का टंग स्लिप, इमोशनल हो गया, माहौल का असर पड़ गया, चंद मिनट में याद आया कि तुम कौन हो, इंसान हो, ये क्या कर रहे हो, फौरन पीछे हो गया। जब सच आमना बिल्लाही व रसूली व कुतुबी होता है तो बड़े बड़े जंब नहीं, जुनूब होते हैं, बिग सिंस, पहाड़ है गुनाह, वो नहीं, खता। यानी आप यहां जरा हम्बलनेस फील कीजिए, वी आर सो हम्बल कि अल्लाह हम अपनी मिस्टेक्स पे भी तुझसे शर्मिंदा है, बड़े गुनाहों का तो हम जिक्र ही नहीं कर सकते। ये आजजी चाहिए अल्लाह के रस्तों में, ये जब आती है ना तो फिर अल्लाह बंदे को माफ करते हैं। अल्लाह ताला को पता है ये मैंने ही बनाया है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीजें हैं अल्लाह को पता है, लेकिन अल्लाह वो बोझ ना डाल। हमल कहते हैं वो बोझ जो बंदा उठाए और खुशी से उठाए। ये जो प्रेगनेंसी में हमल का लफ्ज बोलते हैं वो भी ये है, हमल बोझ होता है दूसरा, तकलीफ वाला बोझ। ये जो फल लगता है दरख्तों पे वो भी सारा कुछ इसी में है कि किस तरह अल्लाह ताला बंदे को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि देखो तुम सारी नेकियां करके भी मुझसे दुआएं मांगो कि अल्लाह ताला जो किया है उसके अंदर भी तू हमारे लिए जो कमी बेशियां होगी उसको माफ कर दे। हमूला कहते हैं वजन उठाने वाले जानवरों को, जैसे गधा है, घोड़ा है, खच्चर है। तो ये थी वो चंद आयात, और इन आयात में इंसान के लिए बहुत सारी बातें हैं। एक दो रिवायतें सुन लीजिए, मैं ये चाहूंगी कि आप इन आयात से बातें करें। एक गोल ये है कि आप इन आयतों को जुबानी याद करें। आपके पास क्लास में तजवीद तो होती है ना, तो एक एक करके आयत हफ्ते की एक कर लें, जैसे भी आप लोग चाहें। आप इन आयतों को जुबानी याद करें क्योंकि रात सोने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें जरूर पढ़ते थे। ठीक है, दूसरी बात है कि इन आयतों को आप खूबसूरत कैलीग्राफी में लिखें, अपनी फ्रिज पे, कंप्यूटर पे, गाड़ी की स्क्रीन पे, जहां आपकी नजर तब पड़े जब आप इंतजार में हो, किसी के इंतजार में, वेटिंग में, वहां लिख के लगा लें। तर्जमा तो आप लफ्जी कर ही लिया याद, नहीं तो उर्दू तर्जमा भी लिख लें। चंद हदीसें सुनाऊंगी और मुझे यकीन है कि ये हदीसों में से अब आप एक आधी जरूर लिखेंगे अपने हाथ से, क्योंकि ये वो चीजें जो बंदे को अल्लाह की बख्शिश का एहसास भी दिलाती हैं और साथ ही साथ अपने गुनाहों से रुकने को भी सिखाती हैं। पहली रिवायत बुखारी की है, सही बुखारी और मुस्लिम में भी है। फरमाया आपने, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दिल में आने वाली बातों को माफ कर दिया, अलबत्ता इन पर गिरफ्त होगी जिन पर अमल किया जाए या जिनका इजहार जुबान से किया जाए। देखिए ये बात है ला युकल्लिफुल्लाह पे। कैसे? अब किसी के घर गए, घर फैला हुआ है, मैसी गंद पड़ा हुआ है, कीड़े दौड़ रहे हैं, दिल में आ गया कितनी गंदी औरत है, बस दिल में आया है, फेसबुक पे नहीं उसकी तस्वीर डाल दी, तो इस पे पकड़ नहीं है। पकड़ कब है? जब जुबान पे लाकर दूसरों में उसकी कीमत शुरू कर दी, ये मुराद है। तो दिल में बुराइयां आएंगी, दुनिया में जिसमें रहते हैं ये कोई आइडियल दुनिया नहीं है, आपको सब तरह के गुनाह करते दिखेंगे लोग। बट डोंट शेयर दिस विद एनीवन। किसी की बुराई है तो उसको बता दें अच्छे तरीके से, खूबी दूसरों को बताएं। लोग आके यहाँ कभी कसीदे पढ़ते हैं ना, ये अच्छा लगता है वो, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि अच्छी बातें हैं तो ये दूसरों को बताएं, और कोई बुरी बात है, हमारी कोई खराबी है, कोई प्रॉब्लम है किसी ग्रुप से, इंचार्ज से कोई, तो वो मुझे जरूर मैसेज दिया करें ताकि मैं आपकी मदद करवा दूँ। बुराई है तो हमें बताएं, कंप्लेंट्स हमें दें, सजेशन हमें दें, मशवरे हमें दें, बट अच्छी बातें दूसरों को बताएं, शायद आपकी अच्छी बात से दूसरे को फायदा हो। बस आप सबको बताएं, यहाँ क्लास होती है ना, आज आप में से जो साथी कोई अगर चंद नए हैं, मेरा ख्याल है आप सारे क्लास के ही लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फॉर सेक जैसे आप लंदन से आई हैं, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह, आप इस क्लास का, ऑनलाइन क्लासेस का जिक्र ऑन के ही अपने हल्के अहबाब में करें। और माशाल्लाह ऑनलाइन पे सबीलुल जन्ना कोर्स में भी लास्ट वीक ही पूरी हुई है सूरह बकरा। मैं हंस रही थी, मैंने कहा जैसे शादियां इकट्ठी होती हैं फिर खानदान में बच्चे भी इकट्ठे ही होते हैं ना, तो ये सारे कोर्सेज जो हमारे हैं ना ये रमजान के बाद शुरू हुए थे, तो तीन बच्चे तो हो गए हैं, तीन बकराएं हो गई हैं, अब आले इमरान शुरू हो रही हैं। तो आप भी कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें आप अभी आइए, मैं आपको उसका लिंक देती हूँ, आप कल से सुनना शुरू करें, और वो शायद हफ्ते में 3 दिन की क्लास व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी थ्रू, बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला बाकायदा बैठ के सीखने वाला बनाए। चलते फिरते हम बहुत सुनते हैं, आप में से मसला कुछ लोग मुझे बताते हैं व्हाट्सएप पे सुन रहे हैं सूरत मायदा पे, सुने दैट्स एक्सीलेंट, बट बैठ के वो लेसन सुने, नोटबुक पकड़े। आपका हक क्या बनता है तफसीर क्लास में जाने का, चाहे व्हाट्सएप है, वो पेलटॉक क्लास है, वो मिक्सलर पे है, वो कहीं भी किसी और क्लास में एंगल से सुनते हैं, नो प्रॉब्लम, मीडियम इज नॉट द इशू। इशू ये कि आपका उस वक्त सुनते वक्त कंसर्न क्या होता है। हमारे ऐसे से प्यारे सिस्टर्स हैं पेलटॉक क्लासेस से जो शुरू से निकली, ये सारी टीम इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस से तो बनी, लेकिन ये बैठ के सुनते थे। नबील वही देती हैं कि आप घर में बैठ के सुनती हैं या साथ कुछ और भी कर रही होती हैं अपने, एज अ स्टूडेंट जब क्लास सुनती हैं, बताइए शाबाश, क्योंकि कमिटमेंट। हम ऐसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हम सुबह रोज जब क्लास का वक्त होता है शावर लेते हैं, वाइट स्कार्फ पहनते हैं, अपने रूम अपने टेबल, उनको पता है ना, बल्कि वो तफसीर में कभी बात आ जाती है अच्छा चाय का कप तो आ गया नहीं, तो वो एक दुख थे आपको कैसे पता चल गया, तो लेकिन ये कि वो फोकस्ड होकर सुनते हैं तो फाइन। और कई बेचारे क्लासरूम में आके नहीं फोकस्ड होते, कई स्कूल में आके फोकस नहीं होते, राइट तो असल बात आपका कंसंट्रेशन लेवल है। आप लोग ये देखिए कि किस तरीके से आपको फायदा होता है, और अगर आपको ज्यादा फायदा मिल सकता है तो थोड़ा क्यों ले, आप सबने मिलके बैठ के यहां सुना है, आप अकेले में घर में ऑडियो से सुन ले, नॉलेज तो सेम है बट एटमोसफियर फर्क होता है। बहरहाल कहने का मकसद आप समझ गए हैं कि हम सबको अपना मुहासबा करना। जजाक अल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतुबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्क़िही वसहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन व जालना लिलमुत्तकीन इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। اللهم اغفر لهيجنا وميجتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنسانا اللهم من أخجيته منا فأخجه للإسلام ومن توفيته منا فتوفه للإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تدلنا بعده يا الله ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما غلطیوں کو معاف فرما سب کے دلوں کی جائز خواہشات حاجات اپنی رحمت سے پوری فرما جو بیمار ہیں ان کو صحت عافیت دے اور یا اللہ جو صحت مند ہے ان کو اس وقت کا اور اس زندگی کا بہترین استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ ہمیں محروم لوگوں میں نہ کرنا قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہترین استعمال کیا اور اللہ نے جو نعمت ان کو دی تھی نعمتوں کا حق ادا کیا اور اللہ جس نے بھی جہاں بھی اس چھوٹی سی کوشش میں حصہ ڈالا ان کا یہ سب قبول فرما جو لوگ باہر سے بھی سنتے ہیں یا اللہ ان کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين
لله ما في السماوات وما في الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.